वर्षा काल के पहले वृक्ष क्षीण हो जाते हैं, सूख जाते हैं, परंतु वर्षा काल आने पर तब भी अपने पैरों से, चरणों से, मूल से अपह पीत्वा जल पी पी करके नाना मूर्तय आसन अनेक प्रकार के हो जाते हैं, कोई हरा नीला और बड़े हो जाते हैं, खिल जाते हैं। वृक्षों को पादप कहते हैं। पादप का अर्थ होता है पैर और प का अर्थ है पीने वाले। भगवान ने सृष्टि में अनेक जीव बनाया है तो प्रत्येक जीव एक ही तरह से नहीं खाते हैं। हम लोग मुंह से खाते हैं लेकिन पैर से खाते हैं। वृक्ष तो खड़े हैं लेकिन पैर से रस खींचते रहते हैं। हम लोग भी मां के गर्भ में जब तक थे तो पांचवें महीने में भूख लगती है और पांचवें महीने से खाना प्रारंभ करते हैं लेकिन नाल से खाते हैं। माँ जो कुछ भी खाती है उसका शेयर बच्चे को मिलता है नाल से। नाल को क्या कहते हैं लोग? हाँ, वहां से खा करके आए हैं। और अब माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद तो मुंह से खाना चालू किया। तो वृक्ष पैर से खाते हैं और खाते क्या है, वो धरती का रस पीते हैं। वो केवल जूस पीते हैं, रोटी भात नहीं खाते वृक्ष। तो उनको पादप कहते हैं। तो ग्रीष्म काल में वे झुलसे रहते हैं लेकिन वर्षा काल में जल पी पी करके बड़ा तंदुरुस्त हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे तपस्या करके किसी काम में, धंधा में कोई आदमी सूख जाता है लेकिन वही जब उसे फायदा होता है, तपस्या का फल मिलता है, तो वह खा करके पहन करके बड़ा फ्रेश हो जाता है, मोटा तगड़ा हो जाता है। तो इससे शिक्षा मिलती है कि कष्ट सहना चाहिए, तप करना चाहिए, तप का फल बाद में मिलता है। बिना कष्ट के कृष्ण नहीं मिलते हैं। हमारे हिंदी भाषा में कहावत है, बिना कष्ट के कृष्ण नहीं मिलते। तो पहले दुख उठाना पड़ेगा, बाद में उसका फल आएगा। प्रत्येक कर्म का फल आता है। तपस्या, दान, ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय और सबसे तो भगवत भजन, इसका फल आएगा। तो इसीलिए धैर्य रखना चाहिए। जैसे वर्षा में, अरे ग्रीष्म ऋतु में आपने देखा होगा इतनी गर्म हवा चलती है भारतवर्ष में, इतनी गर्म हवा और ऊपर से सूर्य की गर्मी रहती है, आतप और गर्म हवा, फिर भी वृक्ष सब खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, सूख जाते हैं, मतलब झुलस जाते हैं, पत्ता झड़ जाता है, फिर भी वे रहते हैं। एक दिन इतना दुख से रहने वाले वृक्ष वर्षा काल आने पर खा पी करके खूब पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। तो कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, अच्छा दिन भी आ जाता है। खास करके शुभ कर्म करने में यदि कठिनाई हो तो उस कठिनाई के भय से उसका त्याग नहीं करना चाहिए। विवेकी पुरुष को भगवान की कृपा से फल मिलता है, ये इस श्लोक से शिक्षा मिलती है। अब गृहस्थों पर कुछ कटाक्ष कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, गृहसक्तों पर, गृहस्थों पर नहीं। सरस्व शांतरोध शून्य सुरंगा पिशारसः गृहे स्वशांत कृत्येषु ग्राम्या इव दुराशयः। हे अंग, हे प्रिय परीक्षित, वर्षा काल में सरोवरों के तट अशांत रहते हैं, उनमें कीचड़ हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा सरोवर जो भारतवर्ष के रहते हैं, खास करके गांव में, गांव के पास अथवा जंगल में भी, तो पानी उसमें बढ़ जाता है और हवा चलती है तो पानी के हिलोरे तरंगे तट पर पड़ती रहती हैं। इसके साथ ही साथ कुछ कांटे भी कंटक भी बह कर तो उसमें आ जाते हैं तो किनारे पड़ जाते हैं तरंगों के द्वारा, और कीचड़ भी रहता है। तो कीचड़, घास, कांटे और तरंग खुद, इस तरह से अशांत रोधा रहता है सरोवर का तट, अशांत रहता है। फिर भी सारसा सारस पक्षी तटों पर पड़े रहते हैं। किस लिए पड़े रहते हैं? उनकी दृष्टि रहती है कोई मछली कोई जलचर जीव मिल जाए मैं खा जाऊं, और हो सकता है कि उनको चार घंटा के बाद कोई मिले छोटी सी मछली, फिर भी वही पड़े रहते हैं, वहां से हटते नहीं है। जबकि उसमें उनको बड़ा कष्ट होता है, पानी का झकोरा, हवा का झकोरा आता है, पानी की लहरें आती हैं, कांट है कीचड़ है, फिर भी वहीं कभी कभी तो एक पैर पर खड़े होकर के ऐसे रहते हैं, उसे ध्यान लगाया करते हैं। अशांत रोधासु अपि सरहसु, सरोवरों के अशांत तटों पर भी सारस पड़े रहते हैं। आपने देखा है इसमें सारस पक्षी बड़ा ऊंचा ऊंचा पक्षी होते हैं और वो पड़े रहते हैं केवल आहार के फेर से। ठीक वैसे ही जैसे अशांत कृत